नारायण भक्ति देते हैं, प्रेम भी देते हैं, किंतु उस प्रेम से वशीभूत नहीं होते नारायण। रामचंद्र जी वशीभूत होते हैं आधे, पूरे नहीं होते हैं। तीन भाग में से एक भाग वो देते हैं, अढ़ाई भाग वाला जो है वो नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? ब्रज का जो प्रेम है वो नहीं देंगे, क्योंकि उनके वशीभूत हो जाना होगा। इसलिए रामचंद्र जी भी उसको नहीं देते हैं। नारायण की तो बात ही क्या, वो नहीं देते। किसी के घर में नारायण पैदा नहीं होंगे, उसके घर में नहीं खेलेंगे। रामचंद्र जी आते हैं, खेलते हैं बड़ी सावधानी के साथ में, अपना ऐश्वर्य भाव बनाए रखकर। और की तो बात क्या, शत्रुघ्न और लक्ष्मण सीता जी भी राम से डरते हैं। यदि कुछ थोड़ी सी गलती हो गई, मर्यादा का भंग हुआ तो उसे छोड़ देंगे। और कृष्ण का कुछ नहीं, मर जाए दें, कहां वो ब्रज से बाहर रहें, ब्रज के भीतर में मर जा रहे हैं। इसलिए कृष्ण समस्त बाल लीलाओं के द्वारा ये सब दे दिया करते हैं। यहां तक कि कृष्ण को मारने के लिए आई हुई पुतना को भी प्रेम दे दिया और उसको धात्रि उचित गति दे दी, मातृ उचित। इस कलिकाल में भी वो लीलाओं का गान ब्रह्मा, व्यास, सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी, उनके बाद में चारों आचार्य लोग संप्रदायों के और उनके संप्रदाय में रहने वाले, यहाँ तक कि और क्या, तो शंकर भी कहते हैं भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूर्ति। उनकी इन लीलाओं का, वस्त्रहरण इत्यादि का उन्होंने श्लोक बना करके उसमें दिया है, शंकराचार्य ने भी तो और लोगों की तो कह, और तो वैष्णव लोग ही हैं, बिल्ल मंगल इत्यादि ने, जयदेव गोस्वामी ने, इसके बाद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, इन सब उन्होंने बाल मनोहर और आगे वाली फिर लीलाओं का इन्होंने वर्णन किया है। कली काल में क्या कहा, कलहम लाती थी कली, बात बात में कलह करते हैं लोग। भगवान की भक्ति भी करेंगे, कोई कामना वासना से करेंगे। पहले के लोगों का स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति प्रेम रहता था, कलिकाल में वो नहीं रहता। इसलिए उन लीलाओं का गायन करके सब लोगों के जितने प्रकार के मल हैं सबको दूर कर देते हैं। मल माने ये स्वर्ग भी मल है, मुक्ति भी मल है,
ऐश्वर्य भी मल,
कामनामूलक भक्ति भी मल है, सकाम भक्ति भी मल है, औपाधिक भक्ति है। इन सब मलों को दूर करके यहां तक कि भावुक भक्त जो है उनमें भी कुछ मल है, जो प्रेम नहीं हो रहा है ना, मल तो नहीं कहा जा सकता उसको, कसाय, यहां तक कि प्रेमी भक्तों में भी कसाय होता है। उन प्रेमी भक्तों को भी कसाय को दूर करके क्रमशः स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग इत्यादि की वृद्धि करके महाभाव तक उसको कलिकाल में भी। किसने ये लोग गान करते हैं, किसने लीला कथाओं का गान करते हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविरीडितम कल्मषापहम स्मरण मंगलम श्रीमद आततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा। किस लिए? इन लीला कथाओं का गान करने से कोई भी दुखी व्यक्ति है उसका वो दुख दूर हो जाएगा। जो संसार के पितापों से दग्ध हो रहा है, तरह तरह की उनके ऊपर में कष्ट हैं, दुख हैं, ये सब दुख कष्ट सब सदा के लिए कैसे दूर हो जाएंगे? पहले भक्ति या प्रेम देंगे और प्रेम के प्रभाव से ये सब दूर हो जाएंगे। मैं तो ऐसे नहीं दूर होंगे, ऐसे मालूम होता है पहले दुख दूर होगा और तब फिर भक्ति होती है, ऐसा नहीं। जितने परिमाण में भक्ति होती जाएगी उतने ही परिमाण में दुख कष्ट जितने हैं जगत के दूर। यहाँ तक कि भगवान के प्रति जिनका विरह है, विप्रलम्ब भाव है, भगवान को दर्शन करने के लिए जो लोग छटपट करते हहैं, प्रेम के विरह में, आग के विरह में जलते हैं, उस विरह को भी ये ऐसी कौन है, ये भगवत कथा। भगवान की भगवत कथा भी बड़ी उदार है। भगवान स्वयं भगवत कथाओं के रूप में हृदय में प्रवेश करके उसके जितने मल सबको दूर करते हैं, ऐसी ये कथाएं। तो ये लोग किस लिए गान करते हैं? भागवत की पोथी ले लिया और जाकर के गान करते हैं, 7 दिन आपके यहाँ कथा कहूंगा, किस लिए? सब नहीं, जो प्रेमी भक्त हैं उनके। महाराज जी क्या आपको दूंगा? कुछ नहीं, तुलसी का एक पत्ता दे दे। ठीक, बैठ गए गांव के बीच में और कथा कर, सब लोग श्रवण किया। श्रवण करके क्या हुआ? एक तो उनका ज्ञान दूर हो गया, दूसरा वो जो चोरी चमारी बदमाशी ये सब जो संसार के प्रति आसक्ति थी वो भी दूर हो गई। कैसे दूर हो गई? मालूम नहीं हो, मालूम हो जो दूर हो रहा, किंतु भगवत भक्ति उनके हृदय में श्रद्धा से आरंभ किया। श्रद्धा, इसके बाद निष्ठा, रुचि धीरे धीरे उत्पन्न करते हुए सबको धीरे धीरे वो दूर कर। मालूम नहीं होता ये कैसे हुआ ने? जैसे एक बच्चा स्कूल में गया पढ़ने लगा, बहुत खिलाड़ी है, बहुत खिलाड़ी, अब जब स्कूल में गया और पढ़ने लग गया, रुचि हो गई, अब खेलता नहीं, क्यों? उसको पढ़ने में रुचि हो गई, उसमें आनंद मिलने लगा, इसलिए वो जो पढ़ने की रुचि आई उसने ही सबको दूर कर दिया। उसी तरह से भगवत भक्ति उन कथाओं के श्रवण से ही भक्ति, जो कहता है उसको भी भक्ति, जो सुनता है उनको भी भक्ति होने लगी। कहना जैसे किस लिए गान करते हैं, किस लिए कीर्तन करते हैं, सुनो, बोल रहा हूं, सब प्रकार के मलाप इस श्लोक में है। जल लोक समलाप हम, आप आज तक गान करते हैं, जैसे हम लोग अभी गान कर रहे हैं, हम लोग के बाद भी इस कथाओं को जो सुनेंगे वो इसका गान करेंगे, वो उनसे सुन करके उनके करते 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 जगत, जब तक जगत रहेगा तब तक रहेगा, किंतु हाँ काल के प्रभाव से कुछ छीन हो जाएगा। पहले जैसे होता था ना, अब इस समय वैसा नहीं है। ये तो वृंदावन मथुरा का महात्मा कुछ है, नवद्वीप का महात्मा है, जो ऐसी लीला कथाएं अपने आप होती हैं, और सब जगत में ऐसा नहीं है, ये सुजोग लाभ। तो कहते हैं कली को पापक को विनाश करना बहुत कठिन है। 60,000 88,000 ऋषि जो नैमिषारण्य में थे, नैमिषारण्य नहीं थे, पहले दूसरी जगह थे, अपने अपने स्थान में, सब जगह वो मिलित हुए एक जगह, मिलकर के सोचने, अब कली काल आ रहा है, परीक्षित जैसे व्यक्ति को भी कैसे चलायमान कर दिया, साधारण लोगों की तो बात क्या रहे, इसलिए क्या करना चाहिए? अभी तक हम लोग यज्ञ करते थे, उत्प्रेता वाला है ना, अभी तक यज्ञ का अभी तक चल रहा है, देखा जी हमारा शरीर काला हो गया यज्ञ करते करते,
अंदर बाहर
और धुएं से भीतर भी काला हो गया, शरीर पूरा काला, भीतर बाहर सब काला हो गया। भीतर काला कैसे हुआ? धुएं से
नहीं,
यज्ञ के धुएं से। यज्ञ का धुआं क्या चीज?
आकांक्षा,
ये धुआं है भीतर गया। अब उनकी उनके हृदय में जो भगवत प्रेम और भक्ति होनी चाहिए उसको भी
ढक दिया,
आचरण से भयंकर कलिकाल आ रहा है, जिस समय में लोग अपने अपने दायित्व का पालन नहीं करेंगे, कोई भी ब्राह्मण ब्राह्मण के धर्म को नहीं पालन करेगा, वो शूद्र हो जाएगा, शूद्र जैसा व्यवहार करेगा, ज्ञान उसका नहीं रहेगा, सब चीज में स्वार्थी हो जाएंगे, उसमें रक्षक भी भक्षक हो जाएगा, क्षत्रियों के क्षत्रिय जो गुण हैं ये नहीं रहेंगे। वैश्यों के जो गुण हैं वो नहीं रहेंगे, शूद्रों के जो गुण हैं उन्हें वो राजा होना चाहिए, और क्या होगा उससे उत्पात मचेगा। जिसने कोई शिक्षा नहीं पाई, जो सदाचारी नहीं है, जो जिसमें सहन शक्ति नहीं है, उदारता नहीं है, उनको राजा राजगद्दी पर बैठाया जाए तो वो कंस की भांति रावण की भांति हो जाए। इसलिए पहले ये सब क्षत्रियों में गुण होते थे, ब्राह्मण लोग तो इसको छूते ही नहीं थे, ये सब चीजें अब वो सब नष्ट हो गए। यहां तक कि स्त्रियों में स्त्रियों उचित गुण नहीं रहेंगे, अपने पति को विष दे करके मार करके मरवा करके भी ऐसा काम, और जो सौंदर्य उनके भीतर से आता था अब ऊपर से होठ इत्यादि रंगना और सब केवल केश ही उनका श्रृंगार रह गया। पुरुष लोग कैसे होंगे, पुरुषों का भी बड़ा विचित्र ये सब किया। यहाँ जरूरत होगी तो अपने बेटे को स्त्री को भी मार डालेंगे, इतने स्वार्थी हो जाएंगे। इस तरह से श्रीमद्भागवत में इसका वर्णन किया गया। ये सब कलयुग के उत्पातों को देखकर के भविष्य में क्या होगा, ये यज्ञ भी नहीं होगा, दुष्ट लोग राजा लोग दुष्ट प्रकृति के राजा लोग होने पर ये यज्ञ को भी खत्म कर देंगे, और इसे कुछ लाभ हुआ नहीं, अब क्या करना चाहिए। इसे 88,000 ऋषि लोग बड़े चिंतित होकर के भगवान का स्मरण किया ब्रह्मा जी को, उन्होंने एक चक्र वहीं से फेंका, जहां ये गिर जाता है वहीं पर जाओ, और वहीं जा करके तुम भगवान की कथाओं को सुनो, सुत गोस्वामी को बुलाना, लोमहर्षण सुत को, वो व्यास जी के शिष्य हैं, तुम्हें हरि कथा सुनाएंगे, इसी से तुम लोगों का कल्याण होगा। बस वो जो चक्र फेंका, वो चक्र घूमते 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 घूमते, लड़के मैदान में ऐसा फेंकते हैं ना, देखा है ना? तो वैसे फेंका, और वो चलते 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 जाकर के उसकी नेमी जहाँ पर गिरी, नेमी माने क्या, धुरा हुआ स्थान जहाँ है वहीं पर गिरा, वहीं पर छेद हो गया पाताल तक, उससे एक धारा निकली और वही नैमिष आरंभ हुआ, नैमिष आरंभ, वहीं पर सब लोग एकत्रित हुए। बाई चांस वहीं पर लोमहर्षण सुत भी पहुंचे, और उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, 6-7 प्रश्न पूछे, उसी के रूप में उन्होंने व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत को। इसलिए कलि का बहुत दोष है, कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा, कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा, बाप अपने बेटों पर विश्वास नहीं कर पाएगा, और कि तो क्या स्त्री पर भी विश्वास नहीं कर पाएगा, और ऐसी घटनाएं होंगी। एक दिल्ली का बड़ा भारी व्यापार धुआं का, कलकत्ते का शाहा, बहुत धनी आदमी, लखपति माने करोड़पति, सोने के गहनों से अपनी स्त्री को एकदम भर दिया, जो चेती घर की मालकिनी, किंतु वो थोड़े से श्याम वर्ण के थे, काले के, और स्त्री परम रूपवती थी। उसने भीतर ही भीतर अपने नौकर माने उन्हीं के काम, जो दुकान में काम करता था कपड़ा पड़ा बेचने का, उससे प्रेम करके, और जितने उसके पास में सोने दाने थे सबको लेकर के चंपक हो गए, और ये पागल हो गए, एकदम पागल। अब वो किसी पर विश्वास करेगा? अच्छा, पुरुषों के लिए भी ऐसे ही ठीक, इसके विपरीत पुरुषों में भी ऐसे आते। इसलिए ऐसे उदाहरण हो जाते हैं, न स्त्री पति को, न पति स्त्री को, न बेटा बाप को, न बाप बेटे को। जिसके लिए सब कुछ किया, वो लड़के पिताजी को कहते हैं आप चुपचाप बैठे रहिए, आप एक महीने उसके यहाँ खाइए और एक महीना उसके बड़े के पास में, एक छोटे में। कुछ दिनों के बाद में पिताजी बोले कि भैया हम बड़े के यहाँ नहीं जाएंगे। फिर छोटे ने कहा जैसे यदि बड़ा नहीं खिलाता तो हम क्यों खिलाएंगे। तो उसको देखकर तीसरे ने कहा जब मैं क्यों खिलाऊंगा, सबकी बारी है, वो खिलाए तो मैं खिलाऊंगा। धीरे धीरे किसी ने नहीं दिया, अंत में बीमार पड़े, खांसने लगे, एक ग्लास पानी देने वाला नहीं मिला। अब वो अपने बेटों पर उसको देख करके दूसरे जो पिता लोग हैं क्या करेंगे?
सीखेंगे,
विश्वास करेंगे। ये काल कलिकाल ऐसा है, सब में विवाद आएगा। कहते हैं कि इस कलिकाल में भी जब तक भगवान की ये कथाएं रहेंगी, ये श्रवण करेंगे, कृष्ण का नाम होगा और कृष्ण की कथाएं, ये समल अपने आप, उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। चुटकी बजाते हैं, धर्म मिलेगा, अर्थ मिलेगा, काम भी मिलेगा और मुक्ति भी मिल जाएगी, पंचम पुरुषार्थ प्रेम भी मिल जाएगा, उससे भी बड़ा चीज है वो कृष्ण का सानिध्य में उनकी सेवा भी मिल जाएगी इसी हरि कथा। कब तक? कलयुग के अंत तक। ये कथा ऐसी उदार है और कृष्ण ऐसे उदार है, इसीलिए कहते हैं यहाँ पर सम माने होता है मन की शांति, दम माने इंद्रियों की, जो ऊपर वाली इंद्रियों की शांति, और दम माने अंतर इंद्रियों की शांति को कहते हैं सम, मन शांति। सब काम करते हैं, मन में शांति नहीं है अच्छा लगेगा? कुछ भी नहीं करते हैं, मन में शांति है अब ठीक। दरिद्र से दरिद्र भी रहेगा, धनी से धनी आदमी भी, मन की शांति नहीं है तो कुछ नहीं है, उसको मन की शांति आ जाएगी। और लापो समलापो, सम्मानित हुआ मन की शांति, और आलाप शब्द से बचन, मन की शांति और आलाप भी बंद हो जाता है जिन कथाओं के सुनने से। माने क्या?
कृष्ण इधर भी कथा बंद हो जाता है,
अर्थात तो दोनों वृत्तियों का लोप हो जाता है। कैसे? प्रेम के आविर्भाव से, इन कथाओं के सुनने से जो प्रेम का आविर्भाव होगा, प्रेम हृदय में होगा, उस प्रेम से मन की शांति जो है संसारी ये भी दूर हो जाएगी, और बात भी बोलना चाहिए प्रेम में मत हो जाएगा, उसके सब दुख भी दूर हो जाएगा। इसलिए समला लो, मन का स्थैर्य और बात की प्रवृत्ति भी ये सब बंद हो जाएगी, जिससे हरि कथा के समला हो। और भी कर रहे हैं, सम शब्द से आत्माराम, सुखदेव गोस्वामी पहले आत्माराम थे, सनत सनंदन सनातन आत्माराम, ये आत्माराम भी लाभ अर्थात लोभ, आत्मारामत्व भी दूर हो जाता है, कृष्ण के प्रेम में पागल हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी सनातन सनत सनंदन सनत कुमार भी ये आत्माराम योगी थे, किंतु कृष्ण लीलाओं के कथाओं के श्रवण से उसको दूर भगा करके कृष्ण के प्रेम में मत करो। कथा मात्र के श्रवण से तनिक भी अब कोई आत्मारामत्व का कोई भाव नहीं आता। आत्मारामत्व माने सब इस तरह से समझ लिए, संसार में कोई दुख आता है तो चुपचाप बैठे, संसार का कोई सुख आता है तो चुपचाप बैठे, कोई प्रशंसा कर रहा है तो कोई बात, प्रशंसा गाली दे रहा है तो भी कोई बात। कल हम लोग जहाँ गए थे तो एक संस्कृत के पंडित थे, वो कह रहे थे साला जो कह रहे हैं वो भी ठीक है संस्कृत शब्द में,
हराम ज्यादा
इसका भी संस्कृत में इसका अर्थ है, क्या अर्थ बतला?
कंसस्य हरायाम जातो जोस, कंसस्य हरामे जातो जोस हराम ज्यादा, हराम
ऐसा का सारा माने, सारे माने
सालाम स्थित जोस साला,
साला माने
कोन स्थान,
स्थान है ना, उसमें पाकशाला में जो स्थित है, रंधनशाला में जो स्थित है भाई, इसमें गाली की क्या बात हुई? इसी तरह से जितनी गाली गलौज है संस्कृत के द्वारा वो अपना मस्त। तो जैसे कि इंद्र ने कृष्ण के लिए
बाचाल बालिश
इत्यादि का अस्वस्थ जबी ने उसको उतार करके दूसरा अर्थ ले लिया। मान ले कि हमको साला कहता है कोई आदमी, हमने सोचा जे भाई साला तो बहुत प्रिय होता है, अपनी पत्नी का भाई होता है, तो हमको पत्नी का भाई कहता है तो ये बड़े आनंद की बात है, बहुत अच्छा। हम उसके चरणों में गिर जाएंगे जो भैया हमको साला कहा, मैंने तो ऐसा कोई काम तो किया नहीं, ये मानता है। ऐसे ही ये सब ले लेंगे, शब्दों की वृत्ति ऐसे ही होती है। तो भक्ति होने पर ना, ना तो आत्माराम होने पर ना तो दुख का काज भी काम भी दुख जैसा होगा, ना आनंद की बातें भी आनंद की बातें भी, ओ एकदम ऐसा होगा, गाली दो भी तो भी, मारो तो भी, कुछ भी करो, ये आत्माराम। कृष्ण के भक्त कैसे होते हैं? आत्माराम नहीं, इनसे बहुत ऊपर होते हैं, वो कृष्ण के प्रेम में एकदम सब समय भरपूर रहते हैं, आत्मारात्मत्व को भी लात से मार देते हैं, वैराग्य को भी लात से मार देते हैं। नंद बाबा को वैराग्य की क्या जरूरत है, सुंदर सुंदर पाग बांध करके बच्चे को गोदी में लेकर के गोचारण के लिए जाएं, अच्छी तरह से कहेंगे अरे आज मालपुआ बनाओ, पूरी कचौड़ी बने, और ब्राह्मणों को बुलाओ, उनको भी खिलाओ और हम लोग को भी खिलाओ। कृष्ण को बैठा करके बलदेव जी को खा रहे हैं, खिला रहे हैं, हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं, ये आत्मारत्न वहाँ पर कहाँ जाए। इसलिए वृंदावन में आत्माराम की जरूरत नहीं है, ब्रज में जरूरत, ये आत्माराम तो कहाँ रहे, बैकुंठ के नीचे वहाँ पर स्थित रहे बस। इस प्रकार से यह परम उदारमयी लीला है, ये इस चीज को ऐसे प्रेम को देने वाली ये कृष्ण की लीला कथाएं हैं। ऐसे ये परम उदार कौन है, जिनके अंदर में वो परम उदारमयी लीला कथा जाती है, और जो लोग इस कथा के विषय हैं कौन, नंद बाबा और यशोदा जी, उनकी बात क्या, जो कृष्ण स्वयं उनके दास बने हुए, उनके लड़के बने हुए, उनके प्रेम के लिए तरस रहे हैं, रो रहे हैं, उनके घर में ऐसे खुतरुओं पर खेल रहे हैं, उनकी कैसी, वो कैसे महाभागा है, इसलिए कह रहे हैं। ऐसा आप सौभाग्य और किसी को भी नहीं मिला। इस तरह से बहुत से समल का सब अर्थ कर रहे हैं। अनंतर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा और भी, इन ब्रजता तात हरि सा अवमन्नतात्मजम, इसके लिए कह रहे हैं, इसलिए और भी इस श्लोक में वा पद है, यशोदा वा महाभागो, यहां पर वा शब्द से अनुक्त जो कुछ भी अर्थ उक्त नहीं हुआ उसको भी ले लो, क्या क्या उनको आनंद हुए होंगे, उन सबको ग्रहण करो, समुच्चय वाचो, उसी को अगले श्लोक में वो कहेंगे, हे बस परीक्षित, कुछ दिन अतीत होने पर कृष्ण गोकुल में गोपराज नंद के गृह में आंगने में घुटनों पर चलने लगे, खेलने लगे, कभी कभी दधि इत्यादि को लुढ़का दे, घरों में चोरी करने लग गए, सब गोपियां देख रही हैं कृष्ण हमारे घर में कब चोरी करने के लिए आए, छिप करके रहती हैं। कभी कृष्ण को पकड़ लिया तो कहते हैं मैयारी हमको क्यों पकड़ लिया, ये तो मैंने समझा दिया अपना घर है, तू अपनी मैया है, कह करके उसके तरफ में थोड़ा सा मुस्कुरा दिया बस, थोड़ा सा बंधन ढीला हुआ छोड़ा करके भाग गए, तरह तरह से खेल करते हैं, तुम क्या खोज रहा है बेटा, तुम्हारे हाथ में ये कैसे लगा, मैं बछड़े खोज रहा था, तुम्हारा बछड़ा कहाँ गया, तो तुम्हारी हड़िया में कूद गया, तो कब कूद गया था देखो, बस उसमें लेकर के निकाल करके वो बाबा जो संगमरमर की
बछड़ा दिया था खेलने के लिए,
उसको बछड़े को निकाल, इसीलिए तुमने हाथ में कड़ूले पहना दिए हैं सोने के, यह हाथ में गर्मी लग रही है इसलिए इसको ठंडा करने के लिए मैंने हाथ दिया, मुख में कैसे लग गया, उन बंदरों ने जोर से लगा दिया, छीना झपटी में लग गई, इस तरह से उनके ये सब का मनोरंजन कर रहे हैं, अपने भी वास का स्वादन करते हैं, बार शब्द के द्वारा सब कुछ समस्त ब्रज की लीलाओं को समझो। इसमें महाभागा जो कहा तो इसका मतलब तो ये होता है यशोदा जी और नंद जी ने कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ सेवा करके और उनका मनोरंजन किया, ऐसा किसी ने नहीं किया। कहा नहीं, ऐसा मत समझो, ये तो केवल बाल्य लीला को उपलक्ष्य करके ये कहा गया है। क्यों? आगे जो किशोर लीला होगी, पौगंड लीला होगी, उसका जो रास्ता साधन जिन गोपियों ने किया, उनकी बात अभी नहीं, अभी उनकी बात तो अभी धरी रहे, उनके संबंध में पीछे हम बतलाएंगे, ये अभी इसलिए कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए नहीं बतला रहे। दशम स्कंद में भी वो बतलाया गया है जिसका कल हमने बतलाया था। देवकी वसुदेव जी को वो आनंद प्राप्त नहीं हुआ, वात्सल्य नहीं प्राप्त हुआ, कौन सा? जो यशोदा जी को नंद बाबा के, विशेष करके नंद बाबा और यशोदा में नंद बाबा का आगे नाम दिया और उसके बाद में मैया, क्यों? नीचे से ऊपर जा रहे हैं। नंद बाबा का वात्सल्य है बहुत उत्तम, किंतु यशोदा जैसे, यशोदा जी का कैसा है? अद्भुत। नंद बाबा कुछ कह सकते हैं उद्धव जी से, कृष्ण के लिए तड़फेंगे और बाक से कहेंगे, और ये कह नहीं सकती हैं, बस बिछौने पर गिरी हुई सुन रही हैं कुछ कुछ और आंखों से आंसू गिर रहे, सोच रही ये कृष्ण भी कहीं गया नहीं, अभी शाम को गोचारण कर समय में लौट आएगा, इसलिए प्रतिदिन शाम को
बोलैया लेने के लिए
आरती लेते हुए थाल और ये सब चीजें अपने दरवाजे पर खड़ी हो जाती। नंद बाबा रोते हैं उनको देखकर, ये पागल हो गई, मैं पागल नहीं हो गया। सवेरा जहां हुआ ना, दधि मंथन के लिए बैठ जाएंगे, दूध नहीं कुछ नहीं और बैठ जाएंगे, जब कोई याद दिलाएगा तो बस आज यही तक है, बाद क्या नाम है
मथुरा कमल वृंदावन मकरंद ब्रज बनिता सब पुष्प मधुकर गोकुल चंद कनक बेल श्री राधिका मोहन श्याम तमार इव मम हृदय निकुंज में
बहुत।